व्यास जी नारद जी महाराज कहते हैं, मैं अपनी मां का इकलौता बेटा था और इतना प्यार दुलार करती थी मेरी मां, एक मिनट के लिए उनकी आंखों से मैं ओझल होता, बेटा रामदास किधर गया, तुरंत आवाज देती, इतना प्यार मुझे करती थी और मुझे भजन नहीं करने को मिलता। एक दिन मेरे मन में वैराग्य आया, कहा मेरी मां मर क्यों नहीं जाती, मुझे भजन नहीं करने देती, यद्यपि ऐसा सोचना पाप है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, यद्यपि ऐसा नहीं सोचना चाहिए, जब तक ये रहेगी तो मुझे भजन नहीं करने देगी। और यही हुआ, ऐसा दूसरे दिन मां जब गाय दूहने के लिए गई तो वहां घास में एक विषैला सर्प बैठा हुआ था और तुरंत माता को डस लिया और माता वहीं मर गई। उसका मां का, मेरी मां का प्राणांत हो गया। और उस समय मेरे आंखों से दो प्रकार के आंसू निकले। आप कभी भी ध्यान करना, आंसू दो प्रकार के निकलते हैं, एक गर्म आंसू और एक ठंडे आंसू। व्यक्ति जब दुख में रोता है तो उसकी आंखों से गर्म आंसू निकलते हैं और व्यक्ति जब खुशी में भी रोता है तो उसकी आंसू से, आंखों से ठंडे आंसू निकलते हैं। आंसू गर्म निकलते हैं प्रसन्नता में रोता है। इस प्रकार अभी आपका कोई बेटा अपने कक्षा में प्रथम श्रेणी में आए, आकर के कहा मां आज मैं अपनी कक्षा में प्रथम श्रेणी में फर्स्ट डिवीजन पास हुआ हूं, तो उस समय मां अपने आंचल में छिपा लेती है, उसे लिपटा लेती है, इतना दुलार करती है और उस समय जो आंसू निकलते हैं वो ठंडे आंसू हैं। इस प्रकार से अश्रु प्राप्त होता है, आप देखना वो आंसू ठंडे होते हैं और किसी विपत्ति में व्यक्ति जब रोता है तो आंसू गर्म निकलते हैं। अब यही हुआ, नारद जी बोले मेरी आंखों में दो प्रकार के आंसू निकले, एक आंखों में गर्म आंसू, एक आंखों में ठंडे आंसू। ठंडे आंसू तो इसलिए निकले कि अब मुझे भजन करने से कोई रोक नहीं सकेगा, परमात्मा का भजन करने के लिए अब मुझे कोई रोकने वाला नहीं। और गर्म आंसू इसलिए निकले कि मेरी मां नहीं रही। जाकर बद्रीनाथ धाम में पर्वत के गुफा में नाचने लगे, संतों के बताए हुए मंत्र का जाप करने लगे। जो भी आप सबने मंत्रों का जाप किया उसी प्रकार ऐसा आनंद आया, मैं कीर्तन में तन्मय हो गया कि मेरे हृदय में मेरे कन्हैया का प्राकट्य हो गया। लेकिन व्यास जी एक क्षण भी वो झांकी अंतर दिखी, एक क्षण भी अंतर ध्यान हो गई और बड़ी जोर से मैं रोने लगा। जैसे झांकी अंतर ध्यान हुई जोर से रोया, आकाशवाणी ने कहा कि अरे बेटा अभी तुम्हारे संस्कार शेष हैं, बाकी हैं और अभी आने वाले समय में मुझसे मिलना संभव होगा, अभी कोई संभव नहीं है और मेरी मृत्यु हो गई और जब पूरा सृष्टि ये समाहित तो हो गई और पुनः सृष्टि का सृजन हुआ तो देखो संत की कृपा से सत्संग का आशीर्वाद वही दासी पुत्र आज आपके सामने नारद बना बैठा हुआ है। तो व्यास जी महाराज, ये संसार में कोई काम असंभव नहीं है, कोई काम मुश्किल नहीं है। भगवान के प्रभु के पावन नामों का मैं गान करता हूं, बीड़ा मुझे प्राप्त हुआ। देवदत्ता मिमां बीड़ां स्वर ब्रह्म विभूषिताम, परमात्मा की कथा का मैं गान करता हूँ। मेरे हाथ में प्रभु की दी हुई बीड़ा, और मैं कहना चाहता हूँ कि व्यास जी जब संतों का आशीर्वाद से दासी का ये पुत्र नारद बन सकता है तो आप वेद व्यास होकर के भागवत की रचना क्यों नहीं कर सकते, आप प्रयास करें सब सही हो जाएगा। व्यास जी के हृदय में तो हो गई, लेकिन समस्या आ रहा, कई देवर्षि नारद ने मुझे भागवत तो प्रदान कर दी, मैं उसका विस्तार किया लेकिन मैं भागवत सुनाऊं किसे, जैसे तैसे सबको नहीं सुनाने वाली चीज है, उसका रसिक होना चाहिए। पता चला कोई बात वक्ता जब बोलता है या कोई भी बात आपस में दो लोग बात करते हैं, कोई विशेष बात बोलनी होती है तो सावधान कर देते हैं, ध्यान दीजिए इसी तरह शास्त्रों में बताया गया है, सावधानतया सुनो, सावधान होकर के, सावधान वक्ता भी सावधान कर देता है। और व्यास जी ने सोचा मैंने भागवत की रचना भी करी, नारद जी ने चार मंत्र दिया, लेकिन मैं इसे सुनाऊं पहले किसे, सुनने का तो अधिकारी भी तो होना चाहिए। व्यास जी के हृदय में आवाज निकली कि वो अधिकारी तो केवल संसार में एक ही है, वो भी सुखदेव, मेरा औरस पुत्र, लेकिन मैं संसार वाले लोगों से मैं बोल दूं कि मेरे बेटे ने काम क्रोध पर विजय पाई है तो लोग कहेंगे अपने बेटे की बड़ाई कर रहे हैं। मैं इसे पढ़ाऊं कहते, जब तक मेरे पास ये आएगा नहीं तब तक भी इसे पढ़ाया नहीं जा सकता, और कैसे बुलाऊं, वो तो ब्रह्म समाधि में लीन है, और जन जन में जब तक इसे किसी को श्रवण नहीं कराऊंगा, पढ़ाऊंगा नहीं, तब तक इस भागवत का जन जन में प्रचार कैसे हो पाएगा, संभव ही नहीं होगा। व्यास जी के हृदय से आवाज निकली, देखो चार अंगुल की लंगोटी भी जिसके शरीर में ना हो, चौड़ा वक्षस्थल, लंबी भुजाएं, और ऐसे सुखदेव जी को खींच कर लाने का सामर्थ्य किसी में है तो कौन है, श्रीमद् भागवत महापुराण, और किसी में नहीं। अपने छोटे नन्हे नन्हे से शिष्यों को बुलाया वेदव्यास जी ने, और गिने चुने कुछ मंत्र छोटे छोटे रटा दिए, और कहा बेटा जा करके जहां वहां सुखदेव समाधि में, निर्गुण समाधि में बैठा हुआ है, वहां जाकर के इन मंत्रों को गान करना, श्लोकों को गाना। और नन्हे नन्हे शिष्यों ने इन मंत्रों को याद कर लिया और सीधे सुखदेव जी के पास पहुंचे, जो निर्गुण ब्रह्म समाधि में बैठे हुए हैं, वहां जाकर उन्होंने बड़े सुंदर ढंग से मंत्रों को गाया। वरहा पीडम नटवर वपुहु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवासह कनक कपिसम वैजयन्ते उच्चमालम। आधा श्लोक गया और आधा श्लोक बोल करके जैसे ही चुप हुए, महर्षि वेदव्यास जी के पुत्र सुखदेव जी की समाधि खुल गई। भगवान के सौंदर्य को जब सुना तो उनकी समाधि खुल गई। कहा आगे बोलो, तो शिष्यों ने कहा मुझे बस इतना ही आता है, आगे यदि आपको सीखना है तो ऐसे हजारों मंत्र आपके पिताश्री के पास में है, आप चल करके उनसे सीखे, मुझे तो बस इतना ही आता है। तो सुखदेव जी ने सोचा होंगे कोई, पुनः समाधि में लीन हो गए सुखदेव जी महाराज। और व्यास जी ने शिष्य से पूछा क्या हुआ, बोले गुरु जी एक बार उनकी समाधि जरा क्षण के लिए टूटी और ऐसा ऐसा उन्होंने पूछा, मैंने बताया पुनः समाधि में लीन हो गए। गुरु जी ने कहा पुनः जाओ, दूसरे मंत्र को रटाया, याद कराया, अब की बार जाकर के इस मंत्र को श्रवण कराना। और इस बार जाओ मंत्र सुनाना, शायद परिवर्तन आ जाए। कौन सा मंत्र सुनाया, अब की वाले मंत्र ऐसे याद कराए शिष्यों को, उसमें मेरे गोविंद की करुणा भरी है। अहो वकेयम स्तन काल कूटम जिधाशया पान यता प्रसाद भी लेभे गतिं धातृचितां ततोन्यं कमुवा दयालुं शरणं ब्रजेम। अहो देखो तो सही, ये पूतना मेरे कन्हैया को अपने दोनों स्तनों में जहर लगा करके मारने के लिए आई, मेरे कन्हैया ने उसे भी मोक्ष मुक्ति प्रदान कर दी, कैसा अद्भुत। प्रणत पाल रघुवंश मणि करुणा सिंधु खरार। ये प्रणत पाल रघुवंश मणि करुणा के सागर है। ये बताइए आज ये जो भीड़ एकत्रित हुई है, यदि इनकी कृपा नहीं होती तो कुछ संभव था। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी।